क्यों जलते हैं? मछली को पानी से निकाल दो तो वो क्यों बचती है छटपट छटपट करके एक सेकंड? क्यों नहीं बच सकते? उसको निकाल दो मछली को और कह दे तुम ठीक रहो, यहां रहेगी
रानी।
गोपियों का ठीक ऐसे ही है। इसको कहते हैं तन मनस के इत्यादि भाव, इसी का यहां पर वर्णन किया है। पहले मछली का पानी से प्रेम देखो और वो पतंग जो है अपना प्राण दे देता है उस आग पर न्योछावर कर देता है अपने को। ऐसा प्रेमी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने को न्योछावर यदि करने वाला हो तब ये प्रेम की आढ़ाई अक्षर की परिभाषा या व्याख्या समझ सकता है। इसलिए इतना सहज नहीं है। इसलिए जितने हमारे अंदर में दुर्गुण है इन सब को छोड़ दिया जाए, भजन करते 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 देहात्माभिमान दूर होगा। काम क्रोध लोभ मात्र लोभ मात्र जो ये स्वार्थ के ही लक्षण है ये सब संपूर्ण रूप से छूट जाएंगे। कृष्ण की का जो प्रेम है, जो गोपियों का गोपियों के संबंध में चिंतन करना, उनका काम करना, उनके विचारों को लेना लेते लेते तब कहीं जाकर के प्रेम हृदय में आएगा, तब हम उन चीजों को समझ सकते, तब कृष्ण के प्रति निस्वार्थ के साथ तब हम इन चीजों को कुछ समझ सकते हैं। आज सात कभी अधिक हो गया, तब आज एकादशी है, इधर में कीर्तन कर रहे थे इसलिए आप लोगों का समय इधर में थोड़ा सा ले लिया। अब आज यही कहे और कल इसके बाद में हम क्या कल पत्थर आप लोग को पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्नाय कृष्णाय नाम्ने गौरवस्ते कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो भक्तपते गोपीशः
गोपियों की कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम। जैसे वे प्रतीक थी इस रूप में कृष्ण की आराधना उन्होंने किया है। कहीं भी इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं, अपना उदाहरण अपने आप। यदि किसी को प्रणाम अपने की आवश्यकता हो तो गोपियों के कृष्ण के प्रति जो भाव है उनको अनुसरण करने की चेष्टा करें। वही इसमें बदलाव है जिसकी हमने कल्पना की थी। कृष्ण ने तन्मय रहने की, उनके आलाप में मग्न रहती थी। यहाँ पर तो केवल आलाप दिया है, आलाप अनुलाप विलाप समलाप अनुलाप इत्यादि बहुत प्रकार के 10 प्रकार के भेद इत्यादि अलग अलग सबके उदाहरण है। भ्रमर गीता ने इस सबका वर्णन किया है, एक एक श्लोक एक एक के लिए वर्णन किया। उसकी परिभाषा भी अलग अलग है। संलाप किसको कहते हैं, विलाप किसको कहते हैं, अनुलाप किसको कहते हैं, प्रलाप किसको कहते हैं इत्यादि। और विशेषता विविध प्रकार की चेष्टाएं या विशेष चेष्टाएं दोनों। और सदात्मिका माने सत आत्मिका, आत्मा भी उनमें मिला। जैसे कृष्ण सतन वैसे वो भी कर, उनकी चेष्टाएं कृष्ण वक्त उनकी सब कुछ होती है। सदगुणा में वो गायन गुण का भी वर्णन करती है, कभी भी उनके दुर्गुणों को दोषों को कभी देखती नहीं है। सत्य उनके गुण है। जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति का दोष देखता है तो वो प्रिय बने, किंतु ये जगत में दोनों बातें हैं जो होगा होगा नहीं, गुण देखेंगे दोष भी होगा। इसलिए वहां पर विशुद्ध प्रेम की बातें कर रहे हैं गायन को न आत्मा आगान संत, अपने घर को आगार को सब कुछ को काटे काटे भी समझ लो। कृष्ण अपने भक्तों के पास रहते हैं, जिस समय ये कृष्ण को इस प्रकार से मर करके अवसर भूल जाती है तो कृष्ण वहां पर होते हैं उन्हें भी हैं। कृष्ण भी अपने को घर को सबको कुछ भूल जाए तो वर्णन करना उनका आवाज उनका सदात्म होना ये सब वर्णन करना बहुत कठिन है। इसलिए अपने खुद वर्णन नहीं करते, भागवत का उपयोग न लेकर के लिया कहा जो गोपियों के भावों की प्रशंसा करने वाली है वो मथुरा की कुमारियां या राजकुमारियां या वहां की रानियों उनका बात करें, वो उनकी प्रशंसा करें। कृष्ण गए हुए हैं मथुरा में अपूर्व दिन को ले आए, ले आने के बाद में शाम को या शाम को आए नगर प्रवेश किया। उनके सखा लोग मनमंगल इत्यादि उनके साथ में और यहाँ के लड़के सब उनसे मिल आए। अच्छी चोरी उद्धम वाली चोरी कृष्ण के पीछे पीछे चल रही है।
आए वृंदावन की तरफ से, इसलिए महाविद्या ने एक पेड़ के नीचे नंद बाबा अपनी गड़िया गाड़ी खड़ा की और वहीं पर अपना टेंट लगा दिया। टेंट माने क्या?
गाड़ी
के नीचे ही अपना
दीवान
बिछा दिया या कुछ और बिछा दिया और उसके ऊपर में विश्राम करने लगे। और उनके साथ में और भी लोग थे और उसने कहा कि बाबा मैं जरा नगर को देखा हूँ, बस नगर देखने के लिए। लोगों ने सुना कि कृष्ण और बलदेव मथुरा में आ गए हैं। उनको भी कुछ ऐसा भान था, ऐसी गंगा नदी थी, ये वसुदेव जी के लड़के दोनों हैं और ये किसे चोरी वहां पर पले हैं गोकुल में, बड़े बलवान हैं, आकंत सिंह को मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। इसलिए कृष्ण को देखने की बड़ी लालसा, बड़े सुंदर हैं ये दोनों। सारी नगर की जितनी भी रमणियां थी वो अपने अटारियों पर चढ़कर और देखने के लिए आ रहे हैं। चारों तरफ में भगदड़ मच गई। कोई अंधा था, एक अंधे मित्र को कह रहा है जैसे कृष्ण आ रहे हैं चलो देखते हैं। आंख नहीं है तभी देखने के लिए दोनों में चल पड़े और दोनों चल पड़े अंधे भी गलियों में। ये अभी जो देख रहे हैं ना मथुरा की गलियां, ऐसे ही सकरी गली थी प्राचीन काल से 5000 वर्ष से पहले थी, बहुत पुरानी बस्ती है ये, कम से कम लाख करोड़ वर्ष की होगी मथुरा पूरी जब शत्रुघ्न जी ने इसको बताया। उस समय में कृष्ण चल रहे हैं और वृद्ध जवान लड़के बाल वृद्ध सब लोग स्त्री पुरुष सब लोग उनको देखने के दोनों तरफ में खड़े हो रहे हैं और लड़के उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य हुआ। स्त्रियां जो खेत सवार रही थी मथुरा की भी, वो अपनी सास को या अपनी ननद को या दूसरे सहेली को पा रही है जल्दी से छोड़ने का कृष्ण चले गया और कभी वर्ष हो गया है थोड़ा सा है, अगर यदि कृष्ण ही चले गए तो फिर ये समाज का भी क्या होगा। इसलिए वो सब लोग व्यक्ति व्यस्त होकर के कृष्ण के दर्शन के लिए, कोई उस समय में एक क्षण भी नहीं बीता था यदि कृष्ण चले गए। अभी कृष्ण बहुत दूर है किंतु पहले से कृष्ण उस दिन तो घूम करके चले गए और फिर उसी दिन में ही वो वस्त्र वाला रजत का वध किया। मांगने पर वस्त्र नहीं दिया तो उसका वध कर दिया, हाँ कैसे काट दिया। और उसके बाद में उसका वस्त्र सब ले लिया और ले करके जैसे तैसे पहन लिए और थोड़ी देर में दर्जी मिला सुदामा, पता ये हमारे कपड़े सिल देगा बना देगा साथ साथ, बस देखता ही रह गया उनका। बोले जी क्यों नहीं बनाऊंगा, किसका बनाऊंगा, आप तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, बस बना उनको माफ करके और साथ ही साथ में कपड़े काट करके 10-20 आदमी लगा दिए सब बच्चों के और उनको चोली सही सुंदर सुंदर सुघर पेश बनाया और उनको पहना। कृष्ण ने उनके तरफ में देखा और प्रेम भक्ति उसको देखी जो बड़े बड़े साधनों से नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति भगवान से खुशी रखना चाहता है तो यदि साक्षात नहीं होता मन ही भेद में ही कृष्ण को यदि अर्पण कोई कर दे, कुछ नहीं है तुलसी का एक पत्ता भी अर्पण कर दे, कुछ नहीं है क्या है वो फलम फलम स्वयं जो मैं भक्त्या तदहम भक्ति पतितम प्रजतात्मना, जो बड़े प्रयत्न से ललक करके हमारी सेवा के लिए यदि प्रतिपूर्वक एक पत्ता एक चुनू पानी पत्रम पुष्पम फलम
तुलसी जलमात्री
ये सब चीजें दे देता है। एक तुलसी का पत्ता का कितना मूल्य लौकिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से तो बहुत मूल्य, किंतु लौकिक दृष्टि से एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को यदि प्रेम पूर्वक अर्पण कर दिया तो प्रजतात्मा, प्रजतात्मा माने जो प्रयत्न करके बड़े सावधानी के साथ में कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर के कृष्ण उसको कुछ भी नहीं है पानी दे दिया कृष्ण को, ऐसे लेकर के पानी कृष्ण के लिए अर्पित कर, कुछ भी नहीं है हृदय भी अर्पण कर दे, वो भी तो बड़े प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उसने अर्पण किया और उन्होंने ग्रहण कर लिए, केवल कपड़ा कृष्ण का सिलाई नहीं दिया, कृष्ण सिलाई भी देना चाहते हैं, तो जैसे केवट ने कुछ लिया नहीं तो पार कराई का, जैसे हमको एक चीज दे देंगे और सागर को जो पार करेंगे ना तो केवट से केवट पैसा नहीं लेता, तो हमको ये मैं आपको इस नदी से उतार रहा हूँ और हमको आप हम दोनों में मिताली हो गई, पैसा पैसा हम भी नहीं लेंगे और आप भी मत लेंगे, आप नहीं लेंगे माने क्या बिना साधन भजन का ही हमको बहुत सारी से पार कर देंगे। और भगवान ने ऐसा ही किया, जब राष्ट्रीय नाशन पर जब बैठे सब लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, उनकी आंख एक जगह खोज रही है, वो सखा मारा कहा है केवट कहा है, किंतु वो किसी कारण से नहीं आ सका, नहीं आ सका, कृष्ण खोज रहे ये सखा हमारा कहा है, और उसे मैंने प्रतिज्ञा की है, कोई वचन के द्वारा नहीं भावना के द्वारा, हृदय के हृदय से बातचीत हुई या आंख से बातचीत हुई, बोली से बातचीत नहीं, खोज रहे हैं सुन रहे हैं, अंत में जब नहीं आया तो दूसरे के द्वारा संदेश मिल गया, ऐसे परम कृपालु श्री रामचंद्र जी कृष्ण की तो और क्या। तो इस तरह से मन में मन भी जब भी कोई कुछ कर दे तो भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि उस समय में कृष्णचंद्र जी उसके बाद में आगे बढ़े मालाकार विराज, उसने कृष्ण को गले में और सब बलदेव इत्यादि को सजा, और आगे बढ़े तो सोने के थाल में कोबिया जी चंदन लेकर बच जा रही, उम्र अभी बहुत थोड़ी सी है किशोरी है, किंतु सब अंगों से टेढ़ी है, विशेष करके यहाँ पर कुब्ज निकला हुआ है, गर्दन ऐसी है तो बड़ी सुंदर किंतु कुछ से वो गड़बड़ हो गई है, बस कृष्ण ने उसको देखा और उसको पहचान लिया और कुबिया नहीं पहचान सकी, ये कौन है कुबिया जी पूर्व जन्म की है, तो पहचान गए और झट उसको क्या किया, उसका काजे से चंदन हमें लगा देगी केसर और तिलक, बस बोली नहीं निकली, प्रेम उसके हृदय में उमड़ पड़ा, सोचा कि जब कृष्ण को मेरे कंस को लगाते लगाते तो थक गए, बस कृष्ण को एक उसी स्थान पर बैठा दिया और सुंदर उसे उनके तिलक की रचना कर दी, अलका लगाए तिलक सुंदर किया, गालों में मकर ये सब लगाया और सुंदर सुंदर सब लगा करके अत्यंत राजपुरुष जैसा अद्भुत तो थे ही और विराज, और ललचाई दृष्टि से कृष्ण की तरफ में देखा, कृष्ण ये ठीक है मैं पहले जिस काम के लिए हूं काम कर लू फिर तुम्हारा ही नाम होगा, बस वहां से आगे बढ़े और पहुंच गए इधर में रंगशाला, खाती जाने नहीं दे रहा है और उसको इसके बाद में शाम हो गई फिर लौट आए और चारों तरफ में तहलका मच गया, कंस ने सोचा कि हमारा मृत्यु आ गया, दूसरे दिन नंद बाबा पशुदेव जी अक्रूर जी और कंस के पिता उग्रसेन जहां स्थान पर सबको कंस ने बैठाया, सबके सामने मार करके अपनी छाती ठंडी कर ली, अपने शत्रु को मारूंगा और ये लोग देखेंगे कि उनके बेटे असहाय रूप में मारे गए। उन्होंने समझा ये शायद ये भी उग्रसेन ही जैसा होगा, शिकंजों में जैसे बंद कर दिया। वहां पर कृष्ण वहां से प्रवेश किया, रंगशाला में प्रवेश करते ही एकदम चारों तरफ सब उछल हो गया, हाथी को भिड़ा दिया और उस समय में अनायास ही उसे खिलवाड़ करते ही उसे गिरा दिया दोनों भाइयों ने और उसी का दांत उखाड़ करके उसे। इसके बाद में आगे बढ़े कैसे, उन्मत्त जैसे हाथी का छोटा सा घाव छोटा सिंह घाव ऐसे ही हाथी के दांत जिस पर रक्त के छींटे पड़े हैं और गालों पर भी कहीं कहीं रक्त का छींटा है, इस प्रकार से लेकर के और चले। जब रंगशाला में उपस्थित हुए नगाड़ा बजने लगा युद्ध जैसा और पहले से चारों मस्तिष्क कौशल इत्यादि सब प्रस्तुत थे और सजा रहे थे और ऐसे पहलवान भी जैसा। उस समय में चारुण और मुस्तिक ने कृष्ण और बलदेव को पकड़ करके अखाड़े में खींच लिया। कृष्ण ने कहा अरे हम अभी दूध मुखे बच्चे, अभी छोटी उम्र के 8-10 वर्ष के और आप लोग लोहे के समान शरीर बजरी के समान
पर्वत प्रमाण
कितना पर्वत के समान हम लोग की आपकी आपका ये कुश्ती उचित नहीं लगी, हमारे उम्र वाले जो हैं उनसे हम लड़ेंगे। उन्होंने कहीं उम्र उम्र नहीं देखी जाती, खूब दूध और मक्खन खाया है तुम लोगों ने और साफ कुश्ती भी खेला है गोल चारण के तुम और जिसने अगासुर बकासुर और ये सब लोगों को मारा वो साधारण आदमी नहीं हो सकता है, इसलिए कोई भी न्याय अन्याय की बात नहीं है, सभी कुछ न्याय है, राजा के लिए सब कुछ किया जाता है। हम लोग राजा को प्रसन्न करने के लिए महाराज बन को हम लोग अखाड़े में दंगल गए। तब फिर कृष्ण और बलदेव से भी रहा नहीं गया, वो लोग भी अखाड़े में। उसी समय में वहां की जो राजकुमारियां या राजाओं की रमणिया थी मथुरा की
पूर्वनिता
वो बड़ी शोकग्रस्त हो गए और कृष्ण के तरफ में देख करके अफसोस करने इस धर्मशाला में अन्याय हो रहा है, कि जो धर्मसभा में है इस सभा में सबको अन्याय होगा अधर्म होगा, क्यों यहां पर अधर्म हो रहा है, ये जानबूझ करके इन लड़कों को मारने के लिए ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है, इसलिए इस सभा में जो है वो देख रहा है सुन रहा है और इसका प्रतिरोध नहीं कर रहा है उन सब लोगों को अधर्म मिलेगा और उसके लिए पाप होगा। कहने के बाद उसी समय में वो गा रही है, पहले तो वो प्रसंग आया जो द्वादश रसों से विशिष्ट लोगों ने कृष्ण को अपने अपने रूप में देखा, मल्लानाम असनी मेलन नरवरह इत्यादि, पहलवानों ने देखा ये वज्र के समान, कंस ने देखा साक्षात जम हमारे लिए है, बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने ऋषियों ने क्या देखा विराट जोगी नाम परदेश में और जातियों के लिए परदेवता और मनुष्यों के लिए परम सुंदर और गोपियों स्त्रियों के लिए साक्षात कामदे और मैया के लिए
वहां पर देवकी है,
देवकी जी है, नंद बाबा है, वसुदेव है, उनके लिए
देवकी
उग्रसेन के लिए
पत्नियां हैं,
सखाओं के लिए मित्र, जो जैसा है उसी रूप में उदय खित भोजन का पृथ्वी के जो नरेश हैं कौन जो कलिकाल में जो असुर मर करके रामचंद्र जी की लीला में इस समय में क्षत्रिय हुए वो कौन है राक्षस है वो जैसे कंस इत्यादि काल लेनी ये सब राक्षस जरासंध इत्यादि सब वैसे ही है कुछ ब्राह्मण हुए कुछ क्षत्रिय है तो वो करेंगे से ये सब लोग हैं वैसे जैसे थे वैसे दस प्रकार के लोगों ने बारह प्रकार के कृष्ण को देखा बारह वर्षों में और तब ये कृष्ण को साक्षात काम देव के समान देख करके फिर ये कह रहे हैं और हम लोगों जैसा यहाँ पर कोई भी हम जैसा दीनहीन नहीं है हम लोग दुर्भागा हैं यदि कोई सौभाग्यवान है तो गोपियां हैं फिर उसी के लिए वो कर रहे हैं गोपियों की महिमा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक गुप्त तपस् की माचरण जहो स्वरूप लावण्य सामोधनंदम वृद्धि जीवंतम स्वाभिनव दुरा तो एकांत धाम जतत प्रिय ऐश्वर्य ये श्लोक है साधकों के लिए कीर्तन का विषय है श्रवण का विषय है ध्यान का विषय है सब प्रकार से सेवनीय है ध्यान किसका करेंगे इन सब लीलाओं का ध्यान करेंगे कृष्ण के लिए कीर्तन क्या करेंगे इन्हीं लीलाओं का कीर्तन कृष्ण कहते हैं और कीर्तन किस चीज का करेंगे इन्हीं लीलाओं का इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन जो कुछ नवदा भक्ति है सब इन लीलाओं के लिए वो तो परम सौभाग्यवान है जो भगवान के इस लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन सब किया क्या साथ में यही ध्यान का विषय कीर्तन का विषय सबका विषय ठाकुर जी का अर्चन करते हुए भी अर्चन कर रहे हैं दर्शन कर रहे हैं उसमें क्या बिना भावना का ऐसे ही देखेंगे निरस हृदय से ठाकुर जी को न क्या देखेंगे जैसे मतिनंदन का कीर्तन हो रहा है अथवा कीर्तन हो रहा है कदम बकानायण वृंदा विधि निवासी क्या उस समय कीर्तन होगा ये सब आरती के समय में स्मरण करने के लिए ये सब गान के रूप में दिए जाते हैं यदि उस समय इन सब लीलाओं का स्मरण करते हुए ठाकुर जी का दर्शन किया जाए तब तो फिर वो एक साधन है नहीं तो वो कुछ साधन है इसके द्वारा मन उसमें लग जाता है और निराकार में यदि ध्यान लगाए तो एक सेकंड भी नहीं टिकेगा और वहां से एकदम रसा तो उनकी तरफ ले जाएगा तपस की माचरण जब कृष्ण का रूप देख करके बड़ी मुक्त हो गई और करें अहो सखियों गोपियों ने क्या तपस्या की थी जो इस प्रकार लावण्य सा सौंदर्य का था असमोध रूप असमोध माने असमोध रूप जिनके बराबर नहीं है जिसे अधिक किसी को कल्पना नहीं किया असम और सर्वविलक्षण माने जगत में विश्व में ब्रह्मांड में गोलोक में वैकुंठ में कहीं भी ऐसी तुलना का स्थल नहीं है जो रूप प्रतिक्षण नवन्वायमान रूप में दृष्टिगोचर होता है और जो रूप जड़ स्थिति और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार है जितने जगत में जस है स्त्री है शोभा है सौंदर्य है और ऐश्वर्य है सबका ये आधार है ऐसे श्री कृष्ण के रूप को नवनमायमान रूप में निरंतर आंखों के द्वारा नेत्रों के द्वारा गोपियां वो पान निरंतर पान कर हम लोग अभी देख रही हैं कि तू नवनमायमान रूप में है कृष्ण का रूप जो है वो कहां प्रतिक्षण वर्धमान होता है और अनुरागी के निकट जिसको अनुराग नहीं है संत को क्रोध हो जाएगा कृष्ण का रूप देकर, रावण को राम का रूप देख करके क्रोध हो जाएगा, उनको आनंद नहीं होगा। इसकी व्याख्या में बतला रहे हैं। यहां पर बड़े क्षोभ के साथ ये यादवों की पत्नियां ये कह रही हैं, ओह गोपियों ने क्या तपस्या की थी, किसी तपस्या के द्वारा कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण तो नहीं पाया जाता कोई तपस्या के द्वारा, किंतु बिना तपस्या के भी तो कृष्ण नहीं मिलते। तो इन्होंने कौन सी आश्चर्यजनक तपस्या की थी, साधन भजन किया था, जो वो निरंतर कृष्ण का